अगले दिन आरवी उठी तो खुद को बेड पर ना देख झटके से उठकर बैठ गई। उसने नजरें घुमाई तो बेड के दूसरे तरफ शान को ना देखकर उसने सुकून की सांस ली। वो बेड से नीचे उतरी तो देखा शान रूम में था ही नहीं। ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। उसने अंशिका को अच्छे से सुलाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची, इसके साथ ही दरवाजा खुल गया। आरवी चौंककर पीछे हट गई और आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगी। सामने शान खड़ा उसे ही घूर रहा था। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि बाथरूम अंदर से बंद है, आरवी ने तुरंत ही अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। शान ने उसकी कलाई को कसके पकड़ा और बिना एक शब्द कहे उसको खींचते हुए पूल साइड लेकर जाने लगा। आरवी हैरान रह गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? कैसे जल्लादों की तरह मेरा हाथ पकड़ा हुआ है आपने? दर्द हो रहा है मुझे, हाथ छोड़िए। वो कहती रही पर शान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसको खींचते हुए पूल साइड ले गया और झटके से उसको छोड़ते हुए उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। आरवी अपनी कलाई सहलाने लगी। उसकी गोरी कलाई पर शान के हाथ का छाप उभर आया था। एकदम लाल हो गई थी उसकी कलाई। शान अब वापस उसकी तरफ मुड़ा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम करना क्या चाहती हो? उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आरवी ने नज़रें उठाकर उसको देखा और कन्फ्यूज सी बोली, क्या किया है मैंने अब? शान गुस्से ने गरजा, ये मैं तुम्हें बताऊँ? पहले ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसाई, मेरे घर वालों पर अपना जादू चलाकर सबको अपनी तरह कर लिया, फिर बड़ी माँ को अपनी तरह करके ज़बरदस्ती मेरे कमरे पर अपना हक जताने लगी, और अब मेरे साथ मेरे बेड पर सोने के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रही हो। आरवी तो उसकी बात सुनकर हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगी थी। वो कोई जवाब ही नहीं दे सकी। शान अब उसके पास आ गया था। उसने आरवी का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ते हुए उसको अपने करीब कर लिया। आरवी की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। वो उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर जितना वो कोशिश करती शान की पकड़ उतनी ही मजबूत हो जाती, जिससे अब आरवी को दर्द होने लगा था। आंखों में नमी तैर गई। उसने दर्द से छटपटाते हुए कहा, देखिए आप जो समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं, मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया है, अंशु का फ़ायदा नहीं उठा रही हूँ मैं। शान ने उसकी बात सुनकर बेहद गुस्से में कहा, अच्छा तो कल अंशु को लेकर क्यों आई थी अपने साथ? मेरे साथ सोना चाहती हो तो बोलो मुझे, तुम्हारी ख्वाहिश यूं ही पूरी कर देता हूँ। सुना तो होगा ही, लड़कियों का दिल नहीं तोड़ता मैं, बस ये अच्छा बनने का नाटक बंद करो। हक चाहिए ना तुम्हें मेरी पत्नी होने का, तो कहो, अभी ही तुम्हें खुद पर सारे हक दे देता हूँ, पर अपनी ये चालबाजियाँ बंद कर दो। मेरी बेटी का सहारा लेकर मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो, सामने से कहो मुझसे, तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। समझ सकता हूँ मैं, इतना हैंडसम लड़का जब सामने हो तो खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, बहुत से अरमान जागते होंगे ना। चलो आज तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर देता हूँ, पर उसके बाद दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वो गुस्से से उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। आरवी से अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर खुद को उससे आज़ाद किया और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए चीख उठी, बस और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इतनी घटिया सोच है आपकी, छी घिन आती है मुझे आपसे। समझ क्या रखा है आपने मुझे, मैं कल अंशिका को यहाँ नहीं लाई थी, बड़ी माँ ने उसे मेरे साथ भेजा था, कोई शौक नहीं मुझे इस घर में रहने का, जहाँ मेरी कोई इज्जत कोई मान सम्मान ना हो, मजबूरी है मेरी, नहीं जा सकती मैं यहाँ से। अगर जा सकती होती तो जिस दिन यहाँ आई थी और आपने कहा था कि आप नहीं मानते इस रिश्ते को, उसी दिन चली गई होती और लाइफ में दोबारा कभी आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाती। पर नहीं जा सकती मैं यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे आपकी पत्नी होने का कोई हक, आप इस लायक नहीं कि मेरी क्या किसी भी लड़की के पति कहला सके, आपकी नज़रों में हर लड़की बाजारू है, वो आपके पैसों और सूरत को देखकर आपके साथ सोने को तैयार हो जाए, पर मैं आज आखिरी बार आपको कह रही हूं कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। अगर दोबारा आपने मेरी मर्जी के खिलाफ दोबारा मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं बड़ी माँ को सब बता दूंगी। घर नहीं छोड़ सकती, पर इस घर में रहते हुए भी कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। मैं यहां सिर्फ अंशिका के लिए हूं और मुझे उसकी माँ होने का सम्मान मिलना चाहिए। मैं आज से जो करूंगी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही करूंगी। आपका मुझसे अब से कोई रिश्ता नहीं है, तो दूर रहिएगा मुझसे। आरवी की आंखों में नमी तैर गई थी। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए वहां से कमरे में चली गई। कबर्ड से कपड़े लिए और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। आंखों के साथ वो दृश्य घूम गया जब विहान उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने रोते हुए खुद से ही कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालकर मुझे बाजारू लड़की बना दिया, जिसे मेरा रक्षक होना चाहिए था वही मेरी इज्जत पर दाग लगा गया। मेरी तो शादी होने वाली थी तुमसे, तुम्हारी हर बात तो मैंने खामोशी से मानी थी, फिर क्यों सरेआम तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया? पहले तुमने मेरे दामन पर दाग लगा दिया और अब ये मुझे हर पल रुसवा करते रहते हैं। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? क्या चाहा था मैंने अपनी जिंदगी से? एक इज्जत की जिंदगी, और यहाँ हर पल मुझे जलील किया जाता है। मेरा ही पति मुझे बाजारू लड़कियों में शामिल कर देता है। कुछ भी नहीं बचा अब मेरे पास। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर होता कि मैं मर ही गई होती। वो रोते हुए वहीं बैठ गई। शान ने गुस्से में सब कह तो दिया था, पर आज पहली बार उसको खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में क्या कह गया उसे। वो जिम में चला गया और अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकालने लगा। आरवी ने कुछ देर बाद खुद को संभाला और नहाकर बाहर आ गई। रूम खाली देखकर उसने जल्दी से बस मांग में सिंदूर लगा लिया और अंशु को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर चली गई। वहां जाकर उसने बालों को कंघी की, फिर नीचे चली गई। किचन में जाकर उसने सबके लिए खाना बनाया, बस शान के लिए सौरभ को खाना बनाने के लिए कह दिया। आज वो बहुत गंभीर लग रही थी तो सौरभ ने भी कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद वो अंशु को उठाकर उसको रेडी करने चली गई। उसने उसको उठाकर उसको तैयार किया, फिर नीचे आ गई। अब तक सब डिनर के लिए इकट्ठे हो चुके थे। आरवी ने सबको खाना सर्व किया, बस शान को छोड़ दिया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। शान को सौरभ ने ही खाना सर्व किया। ये देखकर शान के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। आरवी अंशु के साथ मुस्कुराकर बात कर रही थी, उसको बड़े प्यार से खाना खिला रही थी, पर चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी और उसने खुद ने एक निवाला भी नहीं खाया। शान को आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी कि उसने आज आरवी को गलत कहा है, पर उसका दिमाग उसको अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। उससे भी ज्यादा खाया नहीं गया और वो उठकर चला गया। आज उनकी डायलॉग राइटर और बाकी स्टाफ के साथ मीटिंग थी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्लान भी देखना था और इन्हीं में उनको रात के 9 बज गए थे। घर पर आरवी अपने सारे काम ठीक से कर रही थी, सबसे नॉर्मल बात भी कर रही थी। उसने सुभाष जी के पैरों की मालिश भी की और अंशु को पढ़ाया भी। लंच में अंशु सो गई तो वो सुभाष जी के पास चली गई। उन्होंने उसे नॉवल दी तो आरवी अंशिका के पास आकर नॉवल पढ़ने लगी।
शाम को रोज की तरह अंशिका के साथ खेलने के बाद खाना बनाने चली गई। शान ने घर पर बता दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगा, तो कोई उसका इंतजार न करे। उसे घर आते लाते 10 बज गए थे। सब खाना खाकर सोने चले गए थे। शान बाहर से ही खाकर आया था तो सीधे कमरे में आ गया। आरवी अंशु के पास बैठी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कुछ सोच रही थी। शान के आने की आहट पाकर वो उठकर सोफे पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। शान अंदर आया तो बेड पर अंशु को अकेला देखकर वो हैरान हो गया। थोड़ा और अंदर आया तो सोफे पर लेटी आरवी पर उसकी नज़रें चली गईं। उसे खुद की उससे हुई बहस याद आ गई। उसने आरवी पर से नज़रें हटा लीं, बैग टेबल पर रखा और कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वापस आया और अपनी तरह लेट गया, पर आंखों में नींद नहीं थी। वक्त बीत रहा था। शान न्यू शो की तैयारियों में थोड़ा व्यस्त था। आरवी सबके साथ नॉर्मल रहती थी, बात करती थी, हंसती मुस्कुराती थी। सुभाष जी की सारी जिम्मेदारी उसने उठा ली थी। अंशु को भी रोज पढ़ाती थी, उसका ध्यान रखती थी, खाने पीने से लेकर सोने तक का सब खुद देखती थी। अंशु उससे और जुड़ती जा रही थी। आरवी ने शान से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। रात को अंशु को सुलाकर वो चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाती थी। सुबह उसे लेकर और अपने कपड़े लेकर अंशु के कमरे में चली जाती, वही नहाकर रेडी होती, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती, अंशिका को खाना खिलाती, पर शान की तरफ देखती भी नहीं थी। सारा दिन सबके साथ रहती और खुश रहती। उसने दोबारा अंशु के एडमिशन की बात भी नहीं की, क्योंकि शान से बातचीत पूरी तरह बंद थी। उसके लिए खाना भी सौरभ बनाता था। आरवी ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जैसे वो वहां हो ही ना। शान भी कुछ नहीं कहता था। घर में सब समझ रहे थे कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। इस बार आरवी ने भी ठान ली थी कि वो नहीं झुकेगी। अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगी। नहीं मानता शादी को तो ठीक है, ना माने। उसके लिए भी अंशु ही सब कुछ थी और वो उसकी माँ के अधिकार से यहाँ रह रही थी। आरवी की अनुपमा जी और रश्मि से बात होती रहती थी। अंशु भी उनसे खुशी खुशी बात कर लेती थी। अर्पिता जी की तो दोस्त ही थी, तो बातचीत होती रहती थी। सुयश जी अपने काम में व्यस्त रहते थे। 6 महीने बाद मेयर के इलेक्शन थे, 3 महीने बाद टिकट मिलने वाली थी, तो वो सोशल वर्क में लगे थे। सुभाष जी अब पहले से बेहतर होने लगे थे, खुश रहते थे। अर्पिता और उनके लिए आरवी का होना बहुत मायने रखता था। उनके अकेलेपन को आरवी ने दूर कर दिया था। खाली होती तो उनके साथ बैठकर नॉवल पढ़ने लगती, कभी वो ही किसी नॉवल की कहानी सुना देते। सब अच्छा चल रहा था। एक यहाँ आरवी और शान के बीच साइलेंट युद्ध छिड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरह रेहान इंतजार कर रहा था रश्मि के फ़ोन का। पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। उस दिन के बाद दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई थी, ना ही बात हुई थी। दिल बेचैन रहता था, पर वो इंतज़ार कर रहा था कि वो खुद उसे फ़ोन करेगी। वहीं रश्मि के दिल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा वो तो उससे बहुत चिढ़ती थी, तो उसे बिल्कुल याद नहीं करती थी। वो तो जॉब ढूंढने में लगी हुई थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया। रेहान उसका इंतज़ार कर रहा था। रश्मि अपनी ज़िंदगी में बिजी थी और परेशान थी, क्योंकि उसे जॉब नहीं मिल रही थी। आरवी अपनी ज़िंदगी में बिजी थी। शान का अब उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं था और शान को भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दोनों एक रूम में रहते हुए अजनबी थे, कोई बात नहीं होती थी उनके बीच। घर में सब खुश थे, क्योंकि आरवी ने धर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अनुपमा जी भी खुश थी क्योंकि आरवी को घर में सब बहुत प्यार करते थे। टू बी कंटिन्यूड।